मंजनकृत मधुमालती पृष्ठ 92। चंदायन और मृगावती के बाद जिस कृति की चर्चा सूफी काव्य के रूप में की जाती है वह है मंजनकृत मधुमालती। उक्त दोनों रचनाओं की तरह मधुमालती की संपूर्ण प्रामाणिक हस्तलिपि प्रति भी अनुपलब्ध है। इसका रचनाकाल सन 1545 ईस्वी है। मधुमालती भी प्रेम कथा है। उपलब्ध रचना अंश के अनुसार करीसर का राजकुमार मनोहर नींद में अप्सराओं द्वारा उठाकर महारस नगर में जाया जाता है, जहां उसे राजकुमारी मधुमालती के चित्रसारी में छोड़ दिया जाता है। निद्रा भंग होने पर वह मधुमालती को देखता है और दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। काफी देर बातचीत करके वे सो जाते हैं। अप्सराएं पुनः उसे उठाकर उसके महल में ला डालती हैं। जागने पर वह मधुमालती के वियोग में तड़पता है और योगी बनकर उसकी खोज में निकल पड़ता है। एक पटरे के सहारे समुद्र पर पार करता हुआ वह एक जंगल में पहुंचता है, जहां उसे एक राक्षस के वेश में पड़े चित्त विश्रामपुर की राजकुमारी प्रेमा मिलती है। वह राक्षस को मारकर प्रेमा के साथ चित्त विश्रामपुर आ जाता है। प्रेमा मधुमालती की सखी है। अगले दिन वह उन दोनों को मिला देती है। मधुमालती की माता को उनका यह प्रेम संबंध अच्छा नहीं लगता है, अतः वह प्रेमा को वर्जित करती हैं। प्रेमा ने इनकार करने पर उसे पक्षिणी बना देती है। पक्षिणी राजकुमार ताराचंद के हाथ पड़ पानी है और उसे अपनी राम कहानी सुनानी है। ताराचंद उसका भाई बन जाता है और उसे लेकर उसकी माता के पास जाता है। माता अभिमंत्रित जल द्वारा उसे पुनः स्त्री रूप प्रदान कर देती है। मधुमालती के माता पिता को प्रेमा द्वारा यह सूचना मिलने पर कि मनोहर योगी वेश में वहां आया हुआ है, वे चित्त विश्रामपुर आते हैं और मधुमालती का विवाह मनोहर के साथ कर देते हैं। आखेट से लौटकर ताराचंद प्रेमा पर मुग्ध हो जाता है और उसे देखते ही मूर्छित हो जाता है। उसका उपचार आरंभ होता है। इसके आगे की कथा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र ने एक जला में सुरक्षित एक पाठ को आधार बनाकर और तदंतर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसके समेत प्राप्त चार विभिन्न पाठों को लेकर मधुमालती का संपादन कर अधूरी कथा को पूरी करने का प्रयास किया है। डॉक्टर मिश्र के अनुसार प्रेमा पर मोहित होकर ताराचंद के मूर्छित होने के पश्चात 6 खंड और हैं, जिनमें कथा का तारतम्य चलता पृष्ठ 93 रहता है। मधुमालती ताराचंद से उसके मूर्छा का कारण पूछती है। वह प्रेमा पर विमोहित है, अतः प्रेमा का रूप वर्णन मधुमालती से कह सुनाता है। मधुमालती अपने पिता के समक्ष उन दोनों के ब्याह का प्रस्ताव रखती है। दोनों का विवाह हो जाता है और राजकुमार मधुमालती प्रेमा तथा ताराचंद सुखपूर्वक साथ ही रहने लगते हैं। कुमार माँ के लगते ही दोनों युग्म चित्रसेन राजा से विदा मांगने के लिए जाते हैं। चारों साथी विदा होते हैं, किंतु कुछ दूर जाकर दो मार्गों में विभक्त हो जाते हैं। राजकुमार 2 साल में कनागिरी पहुंचता है। राजभंडारी गुणनिधान तिवारी से नगर के बाहर उसकी भेंट होती है। राजकुमार अपने माता पिता को कुशल क्षेम पूछता है। पहुंचने पर महल में बड़ा आनंद मनाया जाता है। फिर राजतिलक कर दिया जाता है। इस प्रकार कथा का अंत हो जाता है। विभिन्न प्रतियों की सहायता से मधुमालती का संपादन करने वाले डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी कथा को इसी प्रकार आगे बढ़ाकर इसी अंत तक पर पहुंचाया है। इस रचना में भी यद्यपि सूफी दर्शन का प्रतिपादन अप्राप्य है, लेकिन कथा के समापन पर कवि ने प्रेम के महत्व की स्थापना में प्रेम को अमृत प्राप्ति का साधन बताकर आध्यात्मिकता की ओर इंगित सा कर दिया है। अमर न होत कोई जघारे, मरी जो मरे ते ही मिचू न मारे, प्रेम के आगे सही जय आचा, सो जग जन्मी काल सो सेउ बाचा, प्रेम सरनी जे आपु उबारा, सो न मरे काहू कर मारा, एक बार जो मरे जीव पावे, काल बहुरी ते ही नियर न आवे, मृत्यु का फल अमृत होई गया, निहचय उमर ताहि कह गया। जौजिय जानहिं काल भौं प्रेम सरन करिक नेम फिटै दुहुं जग काल भयो सरन लाल साल जग प्रेम। अर्थात प्रयत्न करते करते हार मान लेने वाला संसार में कभी अमर नहीं हो सकता। प्रेम के मार्ग में जान देने वाले को मृत्यु नहीं मार सकती। इस संसार में जन्म लेकर वही काल से सुरक्षित रहता है जो प्रेम की शरण में चला जाता है। प्रेम की शरण ग्रहण करने वाला किसी के मारने से भी नहीं मरता। प्रेम में मरकर जीवन धारण करने वाले को पुनः काल नहीं ग्रसता। जिसे मृत्यु फल अमृत रूप में प्राप्त हो जाता है उसकी काया अमर हो जाती है। निश्चय ही प्रेम की इस व्याख्या में सूफी सिद्धांत निहित है कि ईश प्रेम में पृष्ठ 94 फना को प्राप्त होने के बाद जब बका की प्राप्ति होती है तब मृत्यु का भय निर्मूल हो जाता है। लेकिन मधुमालतीय कहानी पर यह समापन दर्शन चरितार्थ नहीं होता। अनेक कष्टों को झेलकर जब राजकुंवर का मधुमालती से मिलन हो जाता है तब वे पुनः संसार सुख में लिप्त हो जाते हैं। कुंवर का योगी वेश केवल प्रेम प्राप्ति तक ही बना रहता है। तदंतर वह भोगी बन जाता है और सुख भोग में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रेम कथा में वर्णित लौकिक प्रेम में कहीं भी अलौकिकता का समावेश दृष्टिगोचर नहीं होता। वस्तुतः इस रचना में पीछे कवि का कोई ऐसा उद्देश्य था भी नहीं। यह भी संभव है कि मंजन सूफी ही न हो, एक साधारण मुसलमान कवि हो। ऐसे में उनका सूफी दर्शन से प्रभावित होना सहज प्रतीत होता है। शायद सूफी दर्शन को पूर्ण रूपे हृदयंगम न कर पाने के कारण ही मंजन ने काया अर्थात शरीर के अमरत्व की स्थापना की है जो सूफी दर्शन में स्वीकार्य नहीं है। इस कृति का अंतिम दोहा, औ अमृत जह छा जय असो सुभर सोठाऊ कविता गात जब ही लही रही जगत मही नाऊ। अर्थात प्रेम की शरण ही वह सुभर स्थान है जहाँ अमृत सुशोभित है। जब तक कविता का शरीर रहेगा तब तक प्रेमिका अथवा कवि का नाम भी बना रहेगा। कवि के उद्देश्य को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है कि संसार में प्रेमियों का नाम काया नहीं कविता के माध्यम से अमर हो जाता है। इस दोहे में दिव्य तत्व के दिव्य से मिलन या बूंद के समुद्र में विलय की बात न करके केवल प्रेमी के नाम यश के अमृत की बात कही गई है। इसका एक निहित अर्थ यह भी हो सकता है कि अमर प्रेम की कथा कहने वाले कवि का नाम अमर हो जाता है क्योंकि रही जगत मही नाऊ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसका नाम अमर हो जाता है। अस्तु मंजन कृत मधुमालती भी सूफी काव्य की संज्ञा प्राप्त करने में असमर्थ दिखाई देती है। समाप्त।